एकांतिक कृष्ण भक्ति के लिए उत्तम भक्ति का इंद्रियों के द्वारा साधन करता है। अब यहां से भक्ति आरंभ है, किंतु अभी अनर्थ है। अनर्थों को छोड़ करके संबंध ज्ञान होने पर जब रुचि आसक्ति आई ना और उसे भाव हृदय में प्रकट हो गया तो ये भाव भक्ति अत्यंत से दूर लग गया। साधन भक्ति हो जाएगी सबका किसी न किसी, भाव भक्ति बड़ी दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है प्रेमा भक्ति। उस प्रेमा भक्ति से भी दास्य भाव, दास्य से सप्त, सप्त से वात्सल्य, वात्सल्य से दाम्पत्य और दाम्पत्य से भी अधिक गोपियों का भाव, उससे भी अधिक उसमें भी अधिक सामान्युगा के अंतर्गत
विशुद्ध
मंजरियों का भाव, शत्रुओं का भाव, जीवों के लिए सर्वोत्तम और सब गुह्य है। इससे बढ़कर के अब उस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोगों का राय रामानंद संवाद का कोई अंतिम क्या करते हैं
उपसंहार
की जो बातें बतला रहा है अब उसमें से कुछ आलोचना करते हैं, वो भी एक दिन लग जाएगा और इसके बाद में नया कोई चीज आरम्भ करके भागवत हो या चैतन्य हो। आप लोगों ने ये सुना राय रामानंद जी कह रहे हैं अच्छा बात लाइए आपको हमने सन्यासी के रूप में देखा और आपको गौ रूप में देखा, आपके अंगों से चांदी गौ, फिर देखा क्या आपको श्याम रूप में देखा, बंसी बजा रहे हैं अत्यंत सुंदर मुखार बिंद और सी अंग ललित त्रिभंग आपका है। थोड़ी देर के बाद में देखा उसके सामने
कांचन
फूल तलिका अर्थात सोने की पुतली वो खड़ी है और उसकी आभा से आपका ये शाम अंग भी बहुत
बाहर कांति तुम्हारे स्वर्ग अंग ढका
कुछ वो ढका। आप बतलाइए आप कौन हैं? महाप्रभु जी ने कहा मैं तो वही सन्यासी ब्राह्मण बालक हूं, किंतु आपकी कृष्ण में अत्यंत अधिक भक्ति है और उस भक्ति के नाते उत्तम महापुरुषों का महाभागवतों का लक्षण होता है। स्थाव जन्म देखे ना देखे तानी, वो हमें देख रहे हैं तो वो नहीं ये देखेंगे ये वकील साहब हैं, ये कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं, ये और ब्रह्मचारी हैं, या वो लड़की है, ये नहीं देखेंगे। ये गाय है, बैल है, पेड़ है, कि ये नहीं देखेंगे, देखेंगे उसको, किंतु उसमें अपने इष्ट देव को दर्शन, उनकी स्फूर्ति उससे होती है और उसके शुद्ध स्वरूप चिन्ह स्वरूप को देखते हैं। तो आप भी ऐसे हमको देख रहे हैं किंतु हमको नहीं देख करके अपने इष्ट देवराने कृष्ण को ही आप देख रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मेरा गुण नहीं बल्कि ये आपका गुण है, ये भगवत भक्ति का उत्तम भगवत भक्ति का प्रेम का ये परिचय। राय रामानंद जी ने कहा आप अपनी चोरी छोड़िए, आप सचमुच में ये बताए। तब महाप्रभु जी ने हंस कर और अपना स्वरूप वो स्वरूप क्या दिखलाया, रसराज महाभाव हुई एक रूप, रसराज तब रस स्वरूप जो परम ब्रह्म कृष्ण है वो, और महाभाव स्वरूप में श्रीमती राधिका, यहां पर दोनों एक रूप हो गए। इन्होंने पहले देखा था, पहले क्या देखा, पहले तो गौ रूप देखा, उसके बाद में क्या देखा, कृष्ण को और राधा जी दो को देखा, और राधा जी की कांति से कृष्ण की कृष्ण कांति नील कांति अच्छा कांति के द्वारा। अब इन्होंने क्या देखा, देखी रामानंद भैया अन्य मूर्छित, उन्होंने राधा जी को भी देखा है, पहले कृष्ण को भी देखा है किंतु मूर्छित नहीं, आज क्यों हो गई, कोई विशेष बात। अब तक तो इन्होंने दोनों को अलग अलग देखा किंतु अब देखा दोनों एक, देखा क्या है? उन्होंने महाप्रभु जी ने देखा जैसे ये तो मूर्छित हो गए, बस अपने सुंदर कोमल हाथों से स्पर्श और होने से ही झट उनको वो जग गए। और देखा क्या, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए महाप्रभु जी को, उन्होंने तब देखा क्या, गौरंग नहीं मो नहीं, महाप्रभु जी कारण और हंस करके कारण गौर अंग नहीं मोर राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सुख बिना इहो नाश पर से अन्य अच्छी तरह से चीज को समझ। गौर अंग नहीं, हमारा ये जो अंग देख रहे हो गौर, ये मेरा अंग गौर नहीं, हमारा अंग क्या है, वही नील कांत मणि जो कृष्ण है ब्रजेंद्र श्याम सुंदर, वही मैं बंसी भी बजा रहा हूं, त्रिभंग ललित से खड़ा हूं, श्याम नील कांति वो हमारे अंग से प्रकाशित हो, किंतु राधा जी ने मुझे स्पर्श कर दिया। कैसे स्पर्श किया, राधा जी एक दिन खड़ी है, कोई एक सखी का रही है पद्मा, वो है चंद्रावली जी की अपनी अष्ट शक्तियों में से एक, ललिता जी से या विशाखा जी से कह रहे हैं, विशाखे क्या कहें, हमारी सखी का दुर्भाग्य दुर्भाग्य हो गया, तो दुर्भाग्य ये हमारी सखी आज बहुत दिनों से चेष्टा कर रही थी ये कृष्ण के सब अंगों को दर्शन करें, तो आज उसका यह सौभाग्य हुआ कि हमारा राजा सखी ने नख से मस्तक तक समस्त अंगों का दर्शन करके एकदम आज कृतार्थ हो गई। कहने का ये तात्पर्य जी, ये गोपियों को जो राधा पक्षी है, या राधा जी का ये सौभाग्य नहीं, ये उनकी महिमा चंद्रावनी जी का वर्णन करता तो राधा जी या उनकी सहेली कह रही है, ललिता जी या विशाखा क्या कहें। राधा जी तो जन्म जन्मांतर तक कृष्ण को देखने की सर्वांग चेष्टा करती हैं, किंतु आज तक देख नहीं पाई। जब मुखारविंद की तरफ में देखती हैं तो गोंद जैसे उनकी दृष्टि मुखारविंद में चिपकती है, और देखते 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 उस दिन का समय वैसे ही था। यदि वक्षस्थल पर उनकी नजर पड़ी तो नजर हटती नहीं। यदि त्रिभंग ललित पैरों पर यदि पड़ी, पदनत ज्योति पर पड़ी, वो हटती नहीं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमारी शक्ति का सुनकर के पठमान लगती। क्यों? वो तो सब जगह देख रही है, उनकी स्थिर दृष्टि नहीं गई। आज इनका एक एक अंगों में इतना स्थिर प्रेम है, जो उस दिन जब तक देखी वहीं पर आंख गोंद की तरफ जो चिपकी इधर उधर। राधा जी की उस समय लालसा होती है कृष्ण का एक अंग स्पर्श किया ना, हाँ उसमें इतना माधुर्य वो पाती है, अनुभव करती है, जो करने उनकी लालसा होती है अपने प्रत्यक्ष अंगों से कृष्ण के प्रत्यक्ष अंगों का स्पर्श। ऐसे की बड़ी भारी लालसा है। कृष्ण लीला में वो पूरी नहीं हुई, वो लीला कब हुई? पूरी हुई इच्छा अब ये पूरी हो रही है। जब महाप्रभु जी ने कृष्ण जी का कांति को चुराया, अंग कांति को जब चुराया, तब क्या किया? राधा जी ने यही कहा रहे हैं, गौर अंग नहीं हो, मेरा अंग गौर नहीं है, किंतु मोर राधा अंग स्पर्शन। राधा जी ने हमारे प्रत्येक अंगों से हमारे प्रत्यंग अंगों को स्पर्श किया। स्पर्श माने केवल मात्र उनके अंगों की आभा ही नहीं, अंगों का स्पर्श अंगों से हुआ है। इसलिए राधा कृष्ण और दोनों कृष्ण अलग हैं। राधा जी ने अपने प्रत्येक हाथों से हाथ, अपने वस्त्रक्षर से वस्त्रक्षर, शीर से शीर, पैरों से पैर, समस्त अंगों को ही। और कृष्ण की जो नील कांति थी, उज्जवल नील मणि इसको कहते हैं, कृष्ण को ही उसकी जो आभा थी निकल गई थी। वो राधा जी के अंग की कांति से क्या हुआ?
तब भी अच्छा भी था,
अंग से अंग भी हुए और रहे कृष्ण, किंतु वो गौर बढ़ गए। ये चैतन्य महाप्रभु जी का रस राज महाभाव सब। किंतु यही नहीं, गोपेंद्र सुत तो नंद बाबा के लड़के नंद नंदन के अतिरिक्त बिना तीनों ना स्पर्शे अन्य जन। राधा जी किसी का भी तनिक भी स्पर्श नहीं करते, केवल मात्र कृष्ण के ही अंगों का स्पर्श करती हैं और किसी का नहीं। इसलिए उनका पति इत्यादि जितना भी भाव है वो सब जोग माया के द्वारा जी से कोई भी स्पर्श का संभव है।
माया पर
आज और क्या हुआ? और विचित्र भाव भी, तार भावे भावित करी आत्मन तबे निज माधुर्य करी आस्पद। अब महाप्रभु जी हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण होकर के कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? राय रामानंद को कह रहे हैं। अंगों से अंग को ढक दिया और उनका जो भाव था वो भाव ही ढक गया किससे? राधा जी के। कृष्ण का यह है कि मैं विषय हूं प्रेम का, किंतु उनका भाव ढक करके अब क्या हो गया?
मैं प्रेम का आश्रय,
अब हो गया कि मैं राधिका जी हूं, मैं कृष्ण की सेविका हूं, और राधा जी को महाभाव तक जितने मादन मोदन दिव्योन्माद प्रेमोन्माद प्रेम वैचित इत्यादि जितना भी राधा जी की जो खुद की संपत्ति थी वो सब इनमें संक्रमित हो गया। कृष्ण ने राधा जी ने उसको तब अब कृष्ण की आत्मा मन शरीर शरीर तो शरीर से कट गया, मन उनके मन से और आत्मा उनकी आत्मा की भावनाओं से महाभाव और ऊपर तक सब कृष्ण के अंदर में आ गया। तब कृष्ण उन भावों को लेकर के राधा जी बन करके अपने रूप को अब स्मरण, यही है रसराज और महाभाव दोनों का संबिनन, यही है चैतन्य महाप्रभु का रूप। कह दिया तो और कहा मैंने और सुना आप लोगों ने, न तो श्रोता को न वक्ता का अंश मात्र भी उपलब्धि नहीं। सुन लो ये अभी ज्ञान थोड़ा सा, वो भी खंड, जब अनुभूति का विषय होगा ना थोड़ा सा भी उस समय ये ऐसे भाव नहीं रहेगा। तब तो राय रामानंद जी का जैसा होता था रूप स्वरूप दाम इत्यादि को होता था ऐसा होगा, तुम्हार था ही हमार कि गुप्त नहीं था। अब महाप्रभु जी अब तो अब इस समय तुम्हारे निकट में हमारे लुकाने लिए छिपाने के लिए और कोई भी बात नहीं है, लुकाई ले प्रेम वाले जानो सब। यदि मैंने छिपा भी दिया तो प्रेम के बल से आप सब कुछ जानने में समर्थ हैं, अब हमारे पास में कोई चोरी करने की कोई चीज नहीं रही। गुप्त राखी हो कहा ना कभी करी हो, गुप्त राखी गुप्त रखना किसी को मत कहना, हमारे बातुल चेष्टा लोके उपहास कारण है इस विषय को गुप्त रखना। संसार में जितने भी भक्ति के भाव या प्रेम के उच्च से उच्च सोपान हैं उनमें यह भाव सबसे सबसे श्रेष्ठ और गोपनीय है। गीता जैसे ज्ञान के लिए शपथ दिया न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है इंद्रियों को संयम करने वाले नहीं है और जो गुरु की सेवा नहीं करने वाले हैं ऐसे लोगों से हमारा गीता का यह ज्ञान मत कहना, नहीं तो क्या होगा इसका दुरुपयोग कर नहीं समझ करके कहेंगे कि ये गीता ये कर्म का उपदेश देती है, कोई कहेंगे ये ज्ञान का उपदेश देती है, विशदे तदनंतरम उसमें मिलेगा, कोई कहे कर्म करो कर्म करो उस गीता का उपदेश करेंगे। इसलिए इन लोगों के साथ में इस गीता की बातें मतलब नहीं, जब गीता जो प्राथमिक पुस्तक है धर्म राज्य की उसके लिए शपथ लिया है तो महाप्रभु जी ने क्यों कहा, इसलिए कहा कि जो विषय जो सहजियां हैं जो अद्वैतवादी हैं जो कर्मी हैं जो ज्ञानी हैं जो सत्कर्मी भी हैं उनके यहाँ ये सब मत प्रकाश करना, नहीं तो कहेंगे क्या ये सब पागल हैं उपहास करेंगे। अभी भी रागानुगा की साधारण बातें भी दूसरे लोग उससे क्या करते हंसी मजाक उड़ाते। सार्वभौम भट्टाचार्य भी राय रामानंद के भावों का उपहास करते थे तो और लोगों की तो बात, इसलिए इन सब बातों को मत कहो किसी से। मैंने वेदांत पढ़ लिया है उपनिषद भी पार कर लिया है इसलिए मैं चैतन्य चैतामृत के इन सब चीजों को क्यों नहीं समझूंगा, नहीं समझेगा खाक पत्थर नहीं समझेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती जैसे लोग नहीं समझ पाते तो साधारण आदमी क्या रसिकों के साथ में रह करके 10-20 लाख जन्म उनकी सेवा करेंगे तब कुछ कुछ समझ सकते हैं ने? अभी वो सब बातें हम खुल करके समाज में कहेंगे तो हमारे ये राम प्रकाश जी हैं वकील साहब हैं हमको मथुरा में नहीं रहने देंगे, हमको सबसे पहले बात करनी है, ये लड़कियों को लड़कों को ये सब कुछ अपन कर रहे हैं, ये सब काम की और प्रेम की बातें करता है। मैं कहा तुम्हें भाई सभी गोपी बन करके कृष्ण की सेवा रहने देंगे। यदि कहा तुम सब लोग भगवान का भजन करो, संसार को छोड़ो, संसार में आसक्त मत हो, बिगड़ जाएंगे, ये हमारे लड़कों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए ये प्रेम की ये सब जो अत्यंत पराकाष्ठा की गाते हैं मत करना, नहीं तो हमको एक पागल मैं हूं, एक हम एक बातू पागल और तुम ही द्वितीय बातू, तुम एक दूसरे पगल पागल, दोनों का मेला लग गया। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसी बातें वो गीता में एक जगह कहा है, न भेद बुद्धि जनयेत कर्म संगीना। कर्मी जो लोग हैं, सत्कर्मी जो हैं, इनकी बुद्धि को मत भेद करो भक्ति के द्वारा। उनसे ये श्लोक मत कहो, क्या श्लोक, पिता न सस्यात् जननो न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न मुच्यते सस्यात्। मैं तो एक तरह से पहले ही से हुआ, उनको कहो अच्छी तरह से देखो, माता पिता की सेवा करना, और पिता ही स्वर्गो पिता ही धर्मो, पिता को ही भगवान का रूप मान लो और उनकी सेवा करो, और जब कभी हो दिन भर में एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लो, हरे कृष्ण एक दो बार या पांच बार कर लेना, बस यही बहुत है, अधिक मत कहो। न भेद बुद्धि तो इसलिए ये कारण है, जो कर्मी है, सत्कर्मी है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी तक भी इनको मत कहो ये लोग अधिकारी नहीं है। कौन अधिकारी इसके लिए है, क्या उन्होंने ये कह दिया है कि गुप्त राखी हो ना कोई हो प्रकाश प्रकाश मत कर, ये कह दिया तो मैंने उसको स्वामी को इसी व्यक्ति ने क्यों यह सब बतलाया। और एक ये थे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, माँ प्रभु जी से वो सुनने के लिए, उन्होंने कहा भैया हमने जो कुछ सुना है राय रमानंद उनके पास में जाओ सुनाते प्रद्युम्न,
एक ही व्यक्ति
प्रद्युम्न और नृसिंह एक ही, तो उनको भेज दिया। उन्होंने पहले देखा गए तो घर में वो नहीं, मुझे कहाँ गए हैं, उनका अंतरंग जो लोगों ने कहा जैसे वो घर के पिता है, क्या कर रहे हैं, तो 12-13 वर्ष की लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी सुंदरी देवदासियां हैं, उनको अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान करा करके श्रृंगार करके, और कैसे नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है,
नृत्य
और कैसे भाव से कीर्तन किया जाता है, वो कीर्तन का क्या शीत कमला कुछ मंडल धित मंडल तदित जय जय, ये सब सिखला रहे, वही सब जयदेव के गीत गोविंद के पद कैसे कैसे सब रसिक पद उसको सीख रहे। क्या फर्स्ट आदमी है ना, क्या लड़कियों को नंगे स्नान करा करके उनको श्रृंगार कर देता है, बेकार की देखो बस वो लौट करके चले, माँ प्रभु जी को प्रणाम करके जाने लगे, माँ प्रभु ने गया था सुना तो कुछ बोले नहीं, सुना कि नहीं बतलाओ, तो नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, तो वो काम लेकर तथा हट जाता तो अपने भीतर की बात नहीं, महाप्रभु अंतर जामी है समझ ही नहीं, जाओ फिर से जाओ बता फिर से जाओ और उनसे कहना हम मैंने भेजा है, और उनमें कोई भी कुछ देखना मत, मैंने उनसे हरि कथा सुनी। तो जब गए कैसे आए, अथवा आया कुछ हरि कथा सुन, किसने भेजा, तो अच्छा क्या सुनना चाहते हो, तो आपने जो महाप्रभु जी को सुनाया, अच्छा ठीक है, उसको ये सब बातें जो अभी तक जो राय रामानंद का संवाद हुआ था उनको बतलाया, तो यदि सभी से दुख रखने की बात है तो इनको क्यों समझाया, देखा जाए ये महाप्रभु के कृपा पात्र हैं इसलिए सुनाया। महाप्रभु जी ने रूप के अंदर में यही सब भावों की स्फूर्ति की और इनसे कहा था कि आप सब बातें इनको कहें, तुम सुने सुनाएंगे। अधिकारी व्यक्ति को सुनाने में दोष नहीं, इसी को कहते हैं दुख करण अधिकारी बात। और यदि अधिकारी व्यक्ति को नहीं सुनाया जाएगा तो जगत से ये विद्याएं भी और ये भक्ति भी मुक्त हो जाएगी। इसलिए यह कहा हमार बात तुम चेष्टा लोटे कहा तुम एक पागल हम मत पागल, इसलिए गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए अतएव अमार तुम्हारे अमाय यही समतुल, हम दोनों में ही ये पागलपन की बात जगत के बीच लिए ये पागलपन है। जस्य साधारण मनुष्य के लिए जो रात तो जिसके लिए रात है वही ज्ञानियों के लिए दिन है, ज्ञानियों के लिए जो दिन है उनके लिए वो सुख है। तो ये जगत के लोग इसमें सोएंगे तो उसको पागल रख लाएंगे और भक्त लोग इसी को परंपरा का साकार समझेंगे। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होने के बाद में फिर कल जो होगी अब कल
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौरप्रेमानन्दे हरि हरि बोल।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो नमो महावतन्नाय कृष्णदेव प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरदत्ते नमः। आनंद संवाद का उपसंवाद
महाप्रभु जी ने उनको अपना रूप दिखलाया, राधा जी के पते अंगों से कृष्ण के अंगों और उनकी गौर कांति से कृष्ण की नील कांति राधा जी के इसी अंगों का स्पर्श कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरा नहीं कर सकता। गौरंग नहीं वो राधांग स्पर्श गोपेन्द्र सुख बिना तिहना स्पर्श क्यों नहीं स्पर्श कर सकते। राधा में कृष्ण राम विष्णु कल्कि जितने भी अवतार हैं सब तो वही तत्व कई है, द्वारका जी इत्यादि सभी उसमें उनके अंगों का स्पर्श क्यों नहीं कर सकते। कारण क्या उनमें जब तक की महाभाव राधा के श्री अंगों में महाभाव और ऐसा ही भाव उनमें रसराज महाभाव न जिस दिग्गज में उसका स्पर्श नहीं है। वो कृष्णचंद्र ने भी वीर ललित नायक वीर ललित नायकत्व किसी भी शिव विग्रह में नहीं है कृष्ण विग्रह के अतिरिक्त। इसलिए राधिका जी को स्पर्श करने के लिए वीर ललितत्व नायक ना कुछ जरूरी, इसलिए न पुराण हो सकते हैं न जाताधीश हो सकते हैं न कोई भी अवताधीश। इसलिए उस महाभाव को छूने के लिए यह भाव जरूरी, इसलिए किसी में नहीं है इसलिए वो लोग नहीं छू सकते। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
जो रामचंद्र जी ने दीर्घ
राखी सज्ञा संपदा गौरंग नहे गौरंग नहे मोर राधा अंग स्पर्श गोपेंद्र सुख बिना तीनों न है स्पर्श अंग। उसी के लिए टीका में कह रहे हैं व्याख्यान प्राकृत जो सहजिया होती है वो लोग इस प्यार का अर्थ ये लेते हैं कि गौ और कृष्ण ये अलग अलग हैं और गौर ही गौ रूप में ही वो नायक है और प्रतिया भाव से उनकी सेवा की जा सकती है ऐसा वो मानते। इसलिए गौर को नागर और अपने को नागरी मान करके उनकी कामना करते हैं। वस्तुतः वास्तव में उभय उभय माने गौर चंद्र और कृष्ण चंद्र दो है उन्हें, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गौर नहीं मैं कृष्ण हूं, आराधा जी के स्पर्श से ही मैं कृष्ण ऐसा गौर दिखता हूं। दो तो ही नहीं एक ही तत्व है, इसलिए एक ही तत्व माना जाएगा। उभरी स्वयं विग्रह रूप विग्रह गौर ही गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में संभोग पर संभोग रसे नागर या विषय विग्रह गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में।
अरे कुछ जाना करना
इसको गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में वो नागर है भीर ललित नायक और विषय विग्रह और कृष्ण ही अब गौर स्वरूप में विप्रलंब रस में आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह को विषय विग्रह बनाना उचित नहीं, कृष्ण है विषय विग्रह के इनके भोक्ता है और वही गौर विग्रह में वो विप्रलंब रस में आश्रय विग्रह राधा जी हो करके और कृष्ण को आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए वो विषय विग्रह नहीं हो भोक्ता नहीं है भोक्ता किंतु वो भोग्य के रूप में उस समय में है राधा जी के रूप में है, इसलिए कारण कृष्ण ही गौ स्वरूप में विप्रलंब रस में आश्रय विग्रह राधिका जी की भावकांति में श्री कृष्ण चरित्र अप्राकृत श्रृंगार रस राज विग्रह। अप्राकृत श्रृंगार रस राज विग्रह भीर ललित नायक स्वयं नंदन दन के बिना दूसरा कोई विष्णु विग्रह कृष्ण पूर्ण चित शक्ति व स्वरूप शक्ति महाभाव स्वरूप राधिका के भोक्ता नहीं हो सकता, राधिका जी से उनका संपर्क नहीं हो सकता, केवल मात्र किससे होगा श्रृंगार रसमय विग्रह भीर ललित नायक ये कृष्ण ही राधा जी को स्पर्श कर सकते क्योंकि उनकी ये पराशक्ति है ये महाभाव स्वरूप है, इसलिए कृष्ण व्यतीत समस्त विष्णु विग्रह श्रृंगार रस और धीर ललित नायकत्व भाव का अभाव है उनमें नहीं है और वे लोग उन लोगों में ऐश्वर्य प्रधान है द्वारकाधीश तक में जितने भी ग्रहण दोष में ऐश्वर्य प्रधान है, इसलिए श्रीमती जी का नाम है चैतन्य चरितामृत ने बतलाया गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्था सर्वकांता शिरो गोविंद को आनंद देने वाली राधा गोविंद मोहिनी गोविंद को मोहन करने वाली गोविंद सर्वस्था सर्वकांता शिरोमणि, इसलिए तार धारे धारित करी आत्म कवि निज माधुर्य करी आस्था राधा जी के भावों से अपने आत्मा और मन को विभावित करके अपना ही कृष्ण माधुर्य आस्वादन कर तुम्हार ठाई हमार कि गुप्त नहीं कर मुकाई लें बोले जानो सब यदि मैं इसे छिपा भी दूं तो आप अपने प्रेम के बल से हमारे इन सब चीजों को ये कहकर के कहा कि सुगुप्त रखना दूसरों को मत करना, अनाधिकारी लोग जो है कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सहजिया सखी भेदी ज्ञानी मुक्तिवादी ये सब इसके लिए जुटे हैं, इसलिए इस विषय को छिपा कर रखना, नहीं तो वो लोग हंसी उड़ाएंगे और पागल समझेंगे हम। इसलिए उनकी दृष्टि में मैं भी पागल हूं, महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम भी पागल हो, क्यों ये सब चीज उनके लिए अधिकार से बाहर की है। इसलिए यदि ये कोई प्रसंग भी सुने वो लोग तो इसको पागलपन की बात कर, इसलिए उन लोगों से कभी भी ये सब का प्रसंग न हो। रूपे दस रात्रि रायमानंद संगे सुखे गवाईया प्रभु कृष्ण कथा, इस प्रकार से दस रात तक महाप्रभु उनसे लगातार इस विषय में वार्तालाप करते रहे। निगुण ब्रजे रस लीला विचार अनेक कह तार ना पाई होता, ब्रज की जो रस लीलाओं का विचार है इसके संबंध में थोड़ा सा स्पर्श किया है, ये अपार है और बहुत निगुण है। दस रात में ये सब समाप्त हो जाएगा, गाना सुनना नहीं, वो तो प्रारंभ है। ये कैसे हैं इनको बतलाया, तांबा काशा रूपा सुना रत्न चिंता मिली केहो यदि कहां पौता पाए एक खानी करने उठाई ते से हो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नोत्तर करेगा प्रभु राम का। तांबा, तांबा होता है काशा और रूपा मैंने चाहिए सोना और रत्न चिंतामणि रत्न, ये पांच का नाम है, ये इसकी उपमा दे रहे हैं जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में धातु के रूप में तमा मिलता है, पहले तो चलता है कोयला से, कोयला कोयला के साथ में थी किरासन तेल, उसी के नीचे पेट्रोल, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तांबा कांसा रूपा सोना हीरा, हीरा के बाद में ही बड़े बड़े को कहते हैं मणि, जैसे वो पहले निकला था कोहिनूर हीरा, बड़े बड़े रत्न, और उसके बाद में चिंतामणि, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मट्टी को खोदा तो खाने मिलती है तरह तरह की खाने, तो यदि उसको कोई कोयला भी मिलता है तो आजकल बहुत उसको ऐसे ही एक केहो यदि कहां कोता पाए एक खानी, यदि एक को मिलता है दूसरा फिर मिल जाता है तो एक को छोड़ देता है फिर दूसरे श्रेष्ठ वस्तु को ले लेता है, उसी प्रकार से कमे उठाई तेज हो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नों को तिलत होगा। इसलिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म में भगवान की आराधना से उठाया, कहां से उठाया वर्णा सबसे पहले बतलाया साध्य साधन किसको, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हरि को प्रसन्न करना ही समस्त धर्मों का मूल यही साध्य और साधन, भगवान की प्रसन्नता हो गया साध्य और साधन हुआ वर्णाश्रम धर्म का। महाप्रभु जी ने कहा यह बात आगे कहा है, तो उन्होंने कहा कृष्ण कर्मात्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करके विष्णु को प्रसन्न करना ये कोयला इत्यादि के लिए, उससे श्रेष्ठ है कृष्ण में अपने कर्मों का अर्पण कर, ये हुआ। महाप्रभु जी ने कहा यह बाध्य तुम कौन कर्म कर अर्पण करने वाले है, कर्म तुम्हारा है शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं, अतएव इस चीज को छोड़ आगे बढ़ो। उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग, शरीर का मन का जितना धर्म है त्याग करो, यही सबसे साधन। स्वधर्म त्याग माने सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमान एक अनुसार भगवान के शरण। महाप्रभु जी ने कहा ये हो बाजी यो बाजी यही बारी। क्यों? अभी तक उनका स्वधर्म था, शरीर का धर्म ही हमारा धर्म है, माता पिता का पालन, संसार का ये पालन, ये सब जो चीज है ये करना, इनका त्याग करने से कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि ज्ञान निश्चय भक्ति साध्य साध ज्ञान। महाप्रभु जी ने कहा कि यह बाध्य ज्ञान विषय मैंने क्या, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म तत्व हूं, शोक नहीं करता और सब समय प्रसन्न रहता, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोच न काम कर समाचार लगते ही कर, कहीं शोक नहीं करता, सब जगह संभाव आपन्न है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो इनमें सब कुछ नहीं, सब समय प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में पढ़ा सकते लाभ करता है ज्ञान विश्वास। महाप्रभु जी ने यह बात की ज्ञान विश्वास से भक्ति मुक्ति से बोले। अंत में उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति, महाप्रभु जी ने कहा यह है ज्ञान प्रयास मुद्दा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़िए है ही हो आगे बढ़ो। ये जो पांच हुआ ज्ञान शून्य भक्ति तक, ये पांच बतलाया पहले क्या कोला उल्टा सोना तांबा, और फिर इसका दूसरा स्तर और पांच, उसको भी पांच बतलाया। उस पांच स्तर को बतलाएंगे यहां से आरंभ करेंगे। एक तो उसको बतलाएगा शांत दास्य सख्य वासल और मधु, उसको भी छोड़ दीजिए और उसके नीचे भी चले भी जाए तो प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के दो स्तर बतलाएं, वैधि भक्ति का प्रेम और भाव भक्ति वाला प्रेम, नानोपचार वाला वैधि भक्ति और कृष्ण भक्ति रस भाविता ये बतलाया रागानुगा भक्ति का। महाप्रभु जी ने कहा यहां ये ठीक है आगे करें तो आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने बतलाया शांत को रहने दिया, शांत को नहीं बतलाया गया। शांत को क्यों नहीं बतलाया? उनका रागानुगा भक्ति का लक्ष्य था ब्रज में कृष्णचंद्र जी की राधा जी की सेवा, इसलिए ब्रज में शांत क्या चीज है, जमुना शरीर। प्रभुपाद जी ये व्याख्या में बतला जमुना शरीर कुलीन बालुका कदम्ब वृक्ष आदि लताएं, सब वृक्ष और लताएं, गोबेत्र बेशानु बेनु, ये सब शांत रस के विग्रह हैं और जगह हो सकते हैं किंतु ब्रज में शांत रस का प्रकाश नहीं। यदि संभव तो इन्हीं लोगों को ब्रज में का शांत रस की विग्रह है, किंतु कहते हैं भक्ति स्वामी सिंधु में ब्रज में शांत रस का प्रभाव नहीं है, प्रकाश नहीं। यदि कोई एकदम है ही नहीं है तो वहां प्रभाव हो जाए, इसलिए है किंतु उनकी क्रिया को कम देखती है, इसलिए ब्रज में जमुना शरीर जमुना का पानी इसको शांत माना जाता है, किंतु है क्या जमुना शरीर माने जमुना जी, वो तो विशाखा है, इसलिए तो कहा नहीं जा सकता। कुलीन बालू का वहां पर बालू है ना, जमुना का कुलीन इसलिए कहा गया, राधा कृष्ण गोपियों के सहित उसमें प्रवेश करके जल उलीचते हैं, जल उनका अंगों पर स्पर्श करता है। यदि कोई वहां पर व्यक्ति होता ना तो हो तो ये सब लीला नहीं है, लज्जा आती। क्योंकि पानी से क्या लज्जा, वृक्ष से क्या लज्जा, कमल के फूलों से क्या लज्जा, उसको जब अचेतन मान करके उनके सामने लीला में कोई संकोच नहीं होता है। तो चिन्मय जीव चीज वस्तु है, कमल भी है, पानी भी है, नदी भी है, उसका तट भी है, ये सब चिन्मय, वहां के वृक्ष जो है सब चिन्मय, जान रहे हैं, अनुभूति है, रस भी आस्वादन कर रहे हैं, किंतु इनसे शील संकोच लग जाए, उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल होने के नाते उनकी सेवा करते हैं, किंतु वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनको किंतु है नहीं। वो जमुना जी स्वयं विशाखा है, कदम्ब वृक्ष इत्यादि गोपियां से कह रही हैं, कदम्ब वृक्ष इत्यादि कदम्ब को
सखा
कृष्ण को देखते ही आनंद से भर जाते हैं और अपने पुष्ट फल को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो फलाइए इसको हम शांत कैसे कर सकते, कृष्ण के ऊपर में छाया करने लगते हैं। गायें को दक्षिण कृष्ण बन जाते हैं, माता वात्सल्य रस कहेंगे, साधारण गायों को शांत रस कहेंगे। क्यों? गायें अपने आप जाकर के कृष्ण को गोदी में नहीं बैठा सकती और अपना दूध नहीं पाल पिला सकती, पालन पोषण नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके बछड़े जब बन जाते हैं तब, इसलिए इनको भी शांत नहीं कहेंगे। और वेत्र है, वेत्र ये वेत्र जो हाथ में लिया लखिया के रूप में गायों को इधर उधर कर रहे हैं, कृष्ण का करते बड़ा, ये वेत्र क्या है? है तो बलदेव की, वेणु क्या है? बलदेव की है, इसलिए सखा के रूप में सब समय कृष्ण अपनी पेटी में यहाँ वहां सब रखते हैं। वेत्र विशांत वेणु चित्र पत्र रक्त ये सब दास, दास होने पर भी ये सख्त भाव दिख रहे हैं। कोई कोई बड़े वाले जो हैं ये वात्सल्य रस पीते हैं, जो गोदी में लेकर के कृष्ण को खिलाते हैं उनको दूध पान कराते हैं, इसलिए वहां पर दास रस भी संकुचित है, शुद्ध है। वहां पर दास प्लस सख्य मिलकर के वहां पर काम करता, इसलिए ब्रज में सख्य और वात्सल्य और मधुर ये तीन की विशेषता है। अब दास से आरंभ किया, दास प्रेमा भक्ति एक, ज्ञान शून्य उधर छोड़ दो, तब प्रेमा भक्ति एक, दास्य एक, दो, सख्य तीन, वात्सल्य चार और कांत पांच, ये पांच भावों का महाप्रभु जी ने तांबा सोना काशा रूपा सोना और चिंता, इसको चिंतामणि बतलाया
मधुरस
उसको कांता। इस प्रकार से बतला करके प्रभु कहे साध्यावधि सुनिश्चय, ये तो साध्यावधि तक हुआ, निश्चित रूप में ये साध्य, क्या साध्य हुआ? गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है मधुर रस, यही साध्य। किंतु इन गोपियों में भी किसका प्रेम है साध्य? तब उन्होंने बताया राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही साध्य शिरोमणि, राधा प्रेम साध्य शिरोमणि किया जाता है। महाप्रभु जी ने फिर इसके बाद यहां तक तो साध्य साधन तक तो हुआ, अब चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंता करने से ही सभी कुछ वो दे देती, जो चिंता करो सो ही दे, अब उसका प्रकार कोई निश्चित नहीं है कितना प्रकार, वो अनंत प्रकार का हुआ। अब उस अनंत प्रकार का विचार करने पर वो विचार किया कृष्ण का स्वरूप, महाप्रभु जी ने पूछा कि और कुछ कहने लायक है तो कहिए। तो उसने कहा कृष्ण का तत्व, राधा जी का तत्व, प्रेम का तत्व, रस का तत्व, ये चार तत्व पूछे। चार तत्वों को उन्होंने विचार करके अलग अलग उनको बताया। कृष्ण तत्व क्या, राधा तत्व क्या, प्रेम और रस। महाप्रभु जी ने कहा कि इससे और कुछ आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि इससे आगे कुछ बढ़ने का और सही नहीं है, कोई आज तक पूछने वाला नहीं। तभी इसका प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं एक विलास तत्व के संबंध में। विलास की अत्यंत वैचित्र है, अनंत वैचित्र विलास, एक ही प्रकार विलास। विशेष रूप से जो लाश माने सुशोभित होता है, उल्लास जो की करता है, प्रेम का तरह तरह से उसको बनाता है। अब इसी में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इसके बाद में अधिरूढ़ रूढ़ अधिरूढ़ मादन मोदन प्रेम वैचित्र और फिर हमारे कितने दिव्योमा, ये सब उसके लिए विलास तत्व के अंदर में आता। अंत में विलास तत्व में बतलाया रसराज महाभाव दोनों का बतलाने के बाद में ये विलास तत्व अभी ठीक से प्रकटित नहीं हुआ। तब उन्होंने देख लिया, कह तो दिया पहले ही राग ये विलास तत्व बतलाया और दोनों में ऐसा हुआ कि उनको भी ज्ञान में मैं कौन हूं ना सो रमणी ना सो ये भी बतलाए, ऐसा दोनों को भाव हो गया। अतः ससंविद्ध दशा प्राप्त हो करके जावदास वृत्ति को प्राप्त, जहां तक ये प्रेम बढ़ सकता है वहां तक, ये हुआ महाभाव। और उसके आगे ये सब का ये वर्णन किया विलास, उसी को क्लियर करने के लिए रामानंद ने उनसे प्रश्न किया आप कौन हैं, आपको पहले देखा गौ, पीछे देखा श्याम और उसके बाद में देखा कांचनपुर कलिका, आप कौन हैं। हंस करके महाप्रभु जी ने अपना रसराज और महाभाव दोनों एक जगह राधा के प्रत्येक अंगों से कृष्ण का प्रत्येक अंग खाली और उनकी उनके हृदगत जो भाव है राधा जी का महाभाव मादन मोदन का वो सब इनमें प्रवेश कर दिया राधा जी, ये भाव और कांति दोनों उनको प्राप्त होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में पहुंचे। ये जब दिखलाया एकदम उचित, ये है गौ तत्व। इसी तत्व को ये राम बतला रहे हैं। गौ तत्व क्या है, कृष्ण ही गौ तत्व और गौ ही ये कृष्ण। एक संभोग रस में कृष्ण बने हुए हैं विषय विग्रह गिरलावित और रसराज की मूर्ति लेकर के कृष्ण, ये गौ और कृष्ण ही विप्रलम्ब रूप में राधा जी के भाव और कांति को लेकर के गौ। इसलिए विप्रलम्ब रूप में आश्रय है और कृष्ण रूप में विषय।
संभव
यदि आश्रय को हम विषय मान लें तो गड़बड़, इसलिए सहजिया लोग इसी को नहीं समझ करके गौ को ही विषय तत्व नागर बना लेते हैं, ये उनका दोष। अब कहते हैं एटोवरी राय पासे विदाय मांगे। दूसरे दिन महाप्रभु जी ने कहा अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विदाय काले काले यही आज्ञा था, विदाय करते समय में उन्होंने ये आदेश विषय छाड़िया तुम्हें जहां विदा चलो। विषय छड़ या तुम जाओ मिला के माने क्या, ये जो विषय है अर्थात तुम जो गवर्नर यहाँ पर बना हुआ है शासक और इतने सब विषयों को देखता है, कंट्रोल करता है, राज्य शासन चलाते हैं, अब इसको छोड़ो। कभी वो विषय नहीं थे, रामानंद विषय नहीं, उनका कोई भी चीज विषय नहीं, किंतु एक काम में तो लगे हुए हैं, कुछ न कुछ समय तो उनको जाना पड़ता है। आज विषय नहीं होते तो महाप्रभु जी के साथ साथ में सब समय रह सकते हैं, इसलिए काम के समय में दिन में चले जाते हैं राज्य शासन देखे और रात में छिप जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अब तुम विषय को संपूर्ण रूप से त्याग कर दो, यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण के इन प्रेम को आस्वादन कर और इन चीजों को समझना तो संपूर्ण एक मिनट का समय इसमें मत दो, अनितित्व करी तहां आशिक अल्पकाल विषय छाड़ जाए तुम्हें जाओ नीलाचल, नीलाचल में तुम पहुंच जाओ और मैं भी तीर्थ यात्रा करके मैं इधर से घर होकर के और फिर मैं भी पहुंचता हूं। दू जने नीलाचल है रही पर एक समय, हम नीलाचल में एक ही साथ रहे, सुखे द्वारे गोकाल कथा कृष्ण कथा वहां पर हम लोग एक साथ रह करके कृष्ण की कथा की अनुशीलन। जब वो महाप्रभु चले गए उधर तो ऐत बोली राय रामानंद करी आलिंग तारे खड़े पाठाई करी स्वयं, उन्होंने राय रामानंद को गले से लगा लिया और उनको घर में भेज दिया, वो अपने राजभवन में चले गए और महाप्रभु स्वयं थोड़ा सा स्वयं करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर और वहां से प्रातः काल उठी प्रभु देखी हम हनुमान जी का कोई मंदिर वहां पर दर्शन किया, दर्शन करके आगे दक्षिण की तरफ में बढ़ गए और राय रामानंद उसी दिन ही अपनी पूरी तैयारी करके वहां पर सब समझा बुझा करके और चले गए, धीरे धीरे चले गए वो कटक में और राजा से मिल करके उन्होंने यह बात कही कि अब मुझे राजकाज नहीं होगा, इसलिए आप दूसरे को गवर्नर और वहां का शासक नहीं और मैं अब पूरी में रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, वो आ रहे हैं, उनके आने में भी तो समय लगेगा, उनको संभालने में निकालने में समय लगेगा और महाप्रभु वहां से वहां कहां गए थे उन सबका इसके बाद में वर्णन, क्या क्या उन्होंने किया इसका भी वर्णन। तब ये वहां से आए, कहां इनको स्थान मिला, उनको जब आकर के ठहरते थे तो इनके लिए राजभवन है, राजभवन था जगन्नाथ वाटिका, अभी वो वाटिका में उनका रहने का स्थान अभी भी है, तो वहां पर आकर के ठहरते और वहीं वो ठहर महाप्रभु के लिए प्रतीक्षा कर रहे। महाप्रभु जी जब लौट करके आए तो काशीनाथ काशी अर्थात गंभीरा नहीं हुए, उनको वहां पर स्थान दिया गया, अब ये रहते और ये प्रतिदिन वहां पर पहुंच चुके राय रमन। इसी बीच में ब्रह्मानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती और नौ संन्यासी वहां पर ये शब्द करके नौ संन्यास जो नौ मूल है वृक्ष प्रेम लता प्रेम रूपी वृक्ष का अंकुर है
माधवेंद्रपुरी,
दो फड़ हुआ नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और उसकी शिखर मैंने मूल है ये नौ उनको बतलाया, ये लोग आए। उसके बाद में स्वरूप दामोदर जी वहां पर उपस्थित हुए काशी से महाप्रभु के संग सहपाठी थे, वो वहां पर महाप्रभु जब चले गए तो ये भी चले गए, ये कहां गए चले गए वाराणसी, संस्कृत के उद्भव विद्वान थे, रस शास्त्र के क्या थे मैंने कोई भी तत्व तो उनसे बाकी नहीं, वेदांत दर्शन इत्यादि सबके पालन कर समस्त वैष्णव दर्शनों को भी ब्राह्मण इत्यादि सब संपर्क वहां पर संन्यास लेकर के रहने की इच्छा, किंतु उसमें प्रेम नहीं है, इसलिए केवल ब्रह्मचारी का वेश वहां से लिया और स्वरूप ब्रह्मचारी ये नाम है। वहां से लेकर के सुना जो महाप्रभु वहां पर लौट आए, बस यहाँ से ठीक वहां पर। इस तरह से धीरे 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 सभी लोग वहां पर पहुंचने लगे। अब स्वरूप दामोदर और रामानंद जी महाप्रभु के मुख्य मिलने वालों में से, और एक सिखी माइकी और आधीन की, ये सारे तीन जन उनके इस आवास में सब समय संग में रहते।
महिला तो आधी के उम्र
आधानी के भाव इतना पराकाष्ठा का प्रभाव महिला मुझे से ही ये भाव
और सखी माना कृष्णा सूर्य उस समय कृष्णा सूर्य दिखलाए उनको सखी है, तुम सखी ज्यादा भाव है
उसी दिखाई देता। ऐसा नहीं जैसे पुरुष होने से पूरा हो जाएगा, स्त्री होने से आधा, ऐसा नहीं। भाव के ऊपर में सब निर्भर करता है। रामानंद से स्वरूप दामोदर से जैसे खुल करके बात कुछ स्पष्ट नहीं, नहीं कर सकते, नहीं
कर सकते
करते थे, उनके सामने बातचीत होती थी, वो बतलाते थे सब, किंतु जहाँ पर प्रगाढ़ भाव है ये सब दिन में नहीं कर सकते। रात के समय में बूढ़ी होने पर भी बूढ़ी की 84-85 वर्ष, किंतु वो अपने घर आती और निगुड़ जो वैसे सब प्रेम विलास विलास में हो जाते, वो कहना संभव नहीं, किंतु इंगित में सब समझ जाती। इस तरह से फिर महाप्रभु जी आए, मिलन हुआ और सब ये सब बात हुआ। पहले महाप्रभु जी पहले वर्ष में तो वो गुंडीचा मार्जन और मंदिर जगन्नाथ मिशन, इस तरह से हो सकता है कि और 5-7 वर्ष तक ये सब भी जाएंगे, किंतु धीरे 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 महाप्रभु का भाव अंतरंग होता गया और गंभीरा लीला में ही एकमात्र उनका दिन। फिर वो रथ यात्रा तो प्रतिवर्ष होती थी, अब उसमें जाने लायक ही नहीं रहे अंत समय। पहले कहते थे बजरंग समय नाम संकीर्तन और अंतरंग समय
रस आस्वादन,
धीरे 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 वो बढ़ता गया, ये कमता गया। फिर महाप्रभु 24 घंटा आवेश में रहने लगे, फिर कौन अब यहाँ पर कीर्तन में संगीत। इस तरह से उनके ये नित्य तक अंत तक इनके संगी ये बने रहे। महाप्रभु का प्रकट होने के बाद में संत दामोदर जी, गदाधर जी, राय रामानंद जी सभी अपन रखी गए। विद्यापुर नाना मत लोक वैसे यहाँ पर जहां पर भी उनकी वार्तालाप हुई थी, ये गोदावरी टैक्स गोदावरी के उस तट पर, इस तट में राजमहेंद्री है और उस तरफ में कबूर, वो दोनों को मिलाकर के ही विद्यापुर कहते हैं,
विद्यानगर,
विद्यानगर। वहीं पर वो राजा रहता था जो कि
पुरुषोत्तम जाना,
पुरुषोत्तम जाना की जहां पर शादी हुई थी। विद्यापुर नाना मत लोग वैसे वहां पर बहुत लोगों की का वास था। प्रभु दर्शने वैष्णव भैया छाड़ी निज मत, अपने अपने मतों को छोड़ करके महाप्रभु के मत से भगवान नाम करने लगे वैष्णव गए। रामानंद भैया प्रभु विरह में विफल, रामानंद महाप्रभु से विरह में विफल हो गए, प्रभु ध्यान में रहे, स्वतंत्र विषय सब विषयों को छाड़ दिया, गवर्नर पद भी छोड़ दिया, दिन रात महाप्रभु जी के ध्यान में उनसे जो बातें हुई थी, इस तरह से सब समय विरह में व्याकुल हो संक्षेप कर दू रामानंद विज्ञ विस्तार वर्णित नए सहस्त्र कर। मैंने ये संक्षेप में वर्णन, इस वर्णन में भक्ति व सामित सिंधु उज्जवल निर्मणि विगत माधव ललित माधव बृहद भगवतांग वो अलंकार वस्तु रूप गोस्वामी का गोविंद लीला उनका उसमें का भी इसमें आया है। और जितने हमारे रस शास्त्र और जितने भी ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ है, भागवत के वो क्या सनातन गोस्वामी के अंक वाला
वैष्णव तो सब
रसायन है, वो सब इसमें उन्होंने ला करके था। अब इसकी व्याख्या करने पर एक चीज करना चाहता हूँ, जैसा अलग से इसके पढ़ने से क्या होगा, करें सहजे चैतन्य चरित्र घनदुग्धपूर माने दूध उसको खाना कर दो मीठा और तो ये चैतन्य महाप्रभु का चैत्रीय घनेन्द्र दूध के समान, और उसमें रामानंद चरित्र खंड प्रचुर खान होता है, चीनी तो होती है किंतु खान अधिक उपकारी होता है और उसके साथ में मिल जाता है, इसलिए ये खान
तो गुड़ से ही तो खान बनता है, तो
लगता है किंतु उसको पवित्र मानते हैं, चीनी को पवित्र नहीं मानते क्योंकि उसमें हार और क्या क्या चीजें देकर के सेवन इत्यादि देकर के चीनी साफ करते हैं, इसलिए खान को वो पवित्र मानते
हैं। जो बनाते हैं उनके सारे पसीने उसी में गिरते हैं
खान को, तो खान उसमें मिला दो मीठा, और राधा कृष्ण उसमें कर्पूर के समान सुगंधी और रस में उसको और था, इसलिए महापुरुष चैतन्य चरितामृत चैतन्य महापुरुष का चरित्र ऐसे ही सुंदर है, और उसमें राधा कृष्ण का चरित्र उसमें मिला हुआ है, कहीं भी महाप्रभु जी का चरित्र ले लो, जहां भी दक्षिण देश में भी जाएंगे किंतु उसमें राधा कृष्ण का चरित्र जरूर मिला, अभी रामानंद का चरित्र उसमें राधा कृष्ण का मधुर लीला था सब कुछ, ऐसे रथ यात्रा का प्रसंग है उसने दिया, रूप गोस्वामी के साथ में वर्णन किया उसने, सनातन गोस्वामी का चरित्र वर्णन किया उसने भी राधा कृष्ण, राधा कृष्ण मिलाता है कर्पूर मिलन भाग्यवान जेई से करे आस्वाद, जैसे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा का लीला, महाप्रभु चिंतन करते 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 समुद्र में कूद पड़े, और समुद्र में कूद पड़े तो एक मछुए ने जाल में उनको मछली समझ करके पकड़ करके किनारे में लाया, और लाया तो उनका लुंज मुंज शरीर जो था बहुत लंबा हो गया है, संधियां सब छूट गई और घोर बटोल हो गए, और उसको देख करके उसको भूत का भ्रम हुआ, सचमुच में उसको भूत की पाई लग गई, और वो भूत भूत करता वहां से भागा पागल सा होकर, अब इधर में रात भर खोलते खोलते तंग थे ये, जब उसको आते हुए देखा भाजी भूत भूत कहां तुमने भूत देखा, चलो अब नहीं चलेंगे दिखलाने में भी उसको डर, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि महाप्रभु जी को समुद्र में कूद गए हैं और दिया और उसी को भूत समझ रहा हूं, अनुमान किया इन लोगों राय आनंद जी
सरुप
दामोदर और सब लोगों भी, उस समय में उन्होंने कहा जाकर तुम्हारे हम भूत बिहार दे, ये कह करके सरुप दामोदर ने उसे मंत्र कुछ पढ़ा क्या हुआ, थप्पड़ जो उससे थप्पड़ मारने से उसको होश आया, होश आने के साथ ही साथ में कहा चलो हमारे हमको दिखलाओ दूर से दिखला दे, तो वो ले करके अपने जाल से बहुत दूर से दिखलाया कि वहां पर हमने उसको पकड़ा था वहीं पर, ये लोग दिखाई अच्छा ये भाव कैसे हुआ, ये तो महाप्रभु जी का जो जो अष्टसात्विक विकार की अंतिम दशा उसमें मृत्यु दशा ये क्यों हुई, कृष्ण गोपियों को छोड़ करके ब्रज से मथुरा, महाप्रभु इसकी चिंता कर रहे हैं, अब वो चिंता करते 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 रास वाली जितनी बातें थी ना
उनका संलाप निर्जन में जो संलाप उनकी मधुर बोली है टेढ़ी चलन है टेढ़ी उनका देखना है और उनके विलास इत्यादि का अनुभव करते 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 वो स्मरण पद में एकदम गिरह में अधीन हो गए। राधा जी का भाव उनके अंदर में पहुंच गया और महाप्रभु उसी भाव में वो चले गए हमें छोड़कर गिरह में इतने आकुल हो गए हैं कृष्ण के गिरह में जो उनकी दशा है। उन्होंने जब समुद्र को देखा कालिंदी जैसा बस उसी में कृष्ण ही समझा और वहां पर उसके लहरों में थपेड़े खाते 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 वो जाल में आए बहते बहते उधर चक्र तीर्थ में चले गए। अब महाप्रभु जी का यह भाव हुआ किस लिए हुआ विष्णु भावना के द्वारा नहीं तो क्यों होता इसलिए उसने कृष्ण लीला रथ में जा रहा है वो उसमें महाप्रभु जी क्या देख रहे हैं ललिता विशाखा चित्रा और श्रीमती राधिका जी चली गई है वहां कुरुक्षेत्र में और वहां से कृष्ण को ला और वहां पर जितने भाव वो सब भाव मुझे आ गया से तो कारण न पाई। इसलिए महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं महाप्रभु जी की लीला जो साथ में कृष्ण और राधा जी का लीला था वो अपने आप उसको इसलिए भगवान से जय से प्रयास भगवान लोग ही इसका आस्वादन दूसरों को नहीं जाएगा आवश्य आएगा सुनने में मन नहीं सुन तो लिया बस वही पर खुल जाए बतला नहीं सकते मैं पूछूं अच्छे कल हमने क्या बतलाया जो अभी क्या बतलाया बतला नहीं सकते धारण करने की क्षमता समझ में नहीं आया ये सब धारण करने के लिए क्या चीज चाहिए परम ब्रह्म से वैसा साधन चाहिए ऐसा श्रवण चाहिए होते होते धीरे 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 इन अवस्थाओं को पार करना पड़ेगा वर्णाश्रम का धर्म उसका फल त्याग फिर सर्वधर्म पर त्याग ज्ञान निष्ठा भक्ति और इसके बाद में
ज्ञान शून्य
प्रेम भक्ति होगी तब इसके बाद में कुछ कुछ समझेगा और ये सब चीजें होने के बाद में कुछ कुछ उपलब्धि करेगा क्रमशः निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव जब कुछ आने को होगा तब इन चीजों को कुछ तोते तोते की तरह रटने से भी नहीं होगा उसमें आनंद नहीं आएगा कुछ समझ तो लेगा इसलिए वैसा भाव होगा तब ये कैसे होगा इसी को बृहद भगवतान बोलते हैं हम लोग इनको आस्वादन करने योग्य नहीं है तब कैसे होगा जो जो कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हैं जहां हुई है वात्सल्य रस की लीला हुई है गोकुल में नंदन श्रृंगार रस की लीला हुई वृंदावन में राधा कुंड में गोवर्धन के निकट जावट में साकेत में प्रेम सरोवर में वर्षा में ये सब लीला ये सबसे अधिक हुई है राधा कुंड से वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जाए साधन जैसे रूप सनातनी स्थानों को आश्रय दिया और वहां अगर रख रखे उस भूमि में इसलिए रहते थे साधन भजन तमारा नहीं ये भूमि यदि कृपा करके हमको स्पर्श करके यदि हृदय में पूरी करा देंगे हमको क्वेश्चन इसलिए रूप सनातन इत्यादि जितने गोस्वामी लोग हैं उन स्थानों में रहे और कुछ कुछ साधन भजन भी किया और इसमें चिंता यहाँ की भूमि कैसी है भूमि चिंतामणि है भूमि चिंतामणि इसलिए वो चिंतामणि है वो अनुग्रह करके यदि अपना संपर्क दे दे स्पर्श कर दे हमें अनुग्रह तो लीलाएं सब हमारे भीतर में प्रकट हो सकती है तब हम कुछ अनुग्रह दूसरी बात यदि ऐसे वैष्णवों का संग हो जाए जो इन कथाओं में सब समय डूबे रहते हैं और उनकी कृपा हो जाए तो इन लीला कथाओं को हम रामानंद है रूप गोस्वामी है सनातन गोस्वामी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि है रघुनाथ है ऐसे लोग इनकी परंपरा में आने वाले जो महापुरुष लोग हैं हम लोगों के गुरु पास पत्म कर ऐसे यदि कोई दर्शित है वो स्पर्श करके कृपा कर दे तो वो लीलाएं आगे। इसलिए कहते हैं कि भाग्यमान देवी से ही पर आसमान ये लोग साधन भजन अंत में कर करके इस भूमि की कृपा से उस लीला कथा के श्रवण से ऐसा। इसके लिए जोग माया है, गिरिराज गोवर्धन है, जमुना जी है, राधा कुंड श्याम कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, दान घाटी है और सब जो लीला क्षेत्रों का वर्णन है वहां पर यदि कोई आराधना करे सब विषयों को छोड़ करके तो सबसे अधिक रसिक वैष्णव का संग्रही। फिर कहते हैं यहां जे यहां एक बार पिए कर्ण द्वारे। अभी जो वर्णन किया गया राय रामानंद जी का चरित्र महाप्रभु के साथ ये अपने कर्ण के द्वारे जो एक बार भी पिए पीता है कैसे पिएगा मुंह के द्वारा नहीं कान के द्वारा कहीं आंख से पिए कहीं कान से पिए कहीं मुख से पिए। कान के द्वारा पीने का आंख के द्वारा पीने का कहीं है द्वार
पीवी पीवी नेत्र भरी
कान
है
वो है और श्रीमद् भागवत नेत्र का फल वही है वहां पर पीने का और यहाँ पर है एक बार कान के द्वारा इन कथाओं का यदि कोई पान करे पान कैसे होगा एक सुनना है और एक पान करना है। महाप्रसाद कैसे ग्रहण किया जाता है महाप्रसाद की सेवा होती है खाने से नहीं होगा खाने से नहीं उसे पीने पीना माने क्या श्रद्धा पूर्वक काय मनो वास्तु के द्वारा ही नहीं आत्मा के द्वारा भी इसका श्रवण है पीतम पिए कर्ण के द्वारे जैसे कि वो श्लोक है
कर्ण पुत्र संबंध
तस्मिन महान मुखर
चरित्र
पीयूष अशेष सरिता सरिता श्रवंती
बाजे पिबंत
बाजे पिबंत गाढ़ कर्णों से गाढ़ मने ऐसा पियो देख कर भीतर में ऐसा गाढ़ रूप में कैसे पिएगा अन्नत कराते तो होगा नहीं इसलिए अनर्थ सुने तो किंतु श्रद्धा होना चाहिए कैसे इसी के लिए कहते हैं चैतन्य तो रस तत्व ज्ञान है यह श्रवण यदि कोई पान करेगा तो रस तत्व का ज्ञान होगा भक्ति का यही चरम उद्देश्य रस तत्व का ज्ञान रस तत्व ज्ञान होगा कैसे कृष्ण और राधा तत्व जानना पड़ेगा फिर भक्ति तत्व जानना पड़ेगा जानते तब फिर वो रस तत्व इसे ज्ञान होगा प्रेमा भक्ति है राधा कृष्ण के चरण राधा कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति है उसके श्रवण से किंतु कैसे होगा कान से कैसे सुनेंगे उसके लिए बतला रहे उनका चैतन्य गुह तत्व जानी यहाँ बैठे विश्वास करी सुनो तर्क ना करी हल्कित विश्वास करके सुनो विश्वास मैंने यहाँ क्या हुआ श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुनो कृष्ण विश्वास किसको कहें विश्वास के साथ में सुनना मैंने कृष्ण भक्ति के करने से इसके सुनने से कृष्ण की भक्ति हमको होगी चाहे समस्त विश्व पलट जाए भक्ति इस विश्वास के तीन चरण गुरु के कथनों में विश्वास शास्त्र के कथन में विश्वास और भगवत वचनों में विश्वास तीन होगा तीनों के पर आज्ञा आज्ञा परिगम गुरुमुख पद्म वाक्य आर न करिए, इसके द्वारा निश्चित रूप में होगा। सुनने का तात्पर्य है कार्य में परिणत करना, सुन रहे हैं कार्य में परिणत नहीं करते हैं तो कैसे होगा, कार्य में परिणत कैसा होगा। मैंने सुना है जो श्रद्धा किसको कहते हैं, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा संकुच जीवन का सब कुछ करना हो गया है, ऐसे दृढ़ विश्वास का नाम हो तो गया। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, गुरु जी ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर मंगल आरती दर्शन करना, संध्या अन्य वंदना विधिवत करना, हरिनाम संकीर्तन 100,000 करना, वैष्णव और गुरु की सेवा करना, गुरु से उठने से पहले उठो, गुरु के शयन के बाद उनकी सेवा का सब कार्य समाप्त करके उनसे प्रश्न करो, उत्तर करो, उत्तर सुनो। ऐसा करने से तो फिर होगा मठवास इत्यादि, सुन तो लिया। करते हैं मंगाली साधन भजन तो ये हुआ नहीं, गृह छोड़ना ही सब कुछ नहीं, लाल कपड़े इत्यादि ग्रहण करना है या तिलक कंठी धारण करना है, ये अधिक नहीं, अधिक क्या चीज है, उसका साधन करो। साधन नहीं किया मनमानी किया तब तो नहीं होगा, इसलिए साधन कठोर साधन, अनर्थ निवृत्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम आकर के हमारे अनर्थ निवृत्ति के बदले अनर्थ वृद्धि हो, इसलिए अनर्थ निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हुए देखने कि अब हमारी रुचि आ रही है कि नहीं, कैसे आएगी, पुनः पुनः अनुशीलन से रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। देखो विचार करके ये हमारे अंदर में ये रुचि और आसक्ति आ रही है कि नहीं, हमारे अंदर में अनर्थ है कि नहीं, पिछड़ों को देख करके चित्त ललच जाता है कि नहीं, आलस्य भी एक वैसा ही, इसलिए ही सबको छोड़ करके धीरे धीरे हम पहले ये विश्वास था, विश्वास पाइए। अलोक लीला यही परम निगूर, ये लीला परम निगूर है, विश्वास पाइए। जैसे पहले ही रात नैन भंग भेल ना सो रमणी ना सो रमणी, इसमें दूति हमने खोजा नहीं, केवल आंखों से ही वो प्रेम प्रतिपल बढ़ता गया, कैसे बढ़ा और उनका प्रत्येक अंगों का प्रत्येक अंगों से मिल जाना, ये कैसा विलास है, ये कैसे समझ में, तर्क के द्वारा भाई ये सब चीजें समझ में नहीं आई। हम लोग के पास में क्या चीज है, एक तो शरीर है, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अहंकार, इन्हीं से जब हम कुछ विचार करते हैं बुद्धि इत्यादि के, अभी भी हम लोग इन सब चीजों को जो सुन रहे हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विवेचना करते हैं, अहंकार के द्वारा इसमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, किंतु भाई ये सब शास्त्र के लिए यदि विशुद्ध मन हो गया विषयों से तो कुछ कुछ झलक वो पा सकता है, किंतु इससे काम नहीं होगा, इसके लिए विशुद्ध आत्मा का प्रकाश होना चाहिए, सेवक भाव भाव जो है वो आना चाहिए, इसी के लिए कह रहे हैं अलोक लीला एक परम निगूर व्यतीत भावना भक्मा जब चमत्कार भाव यदि सबको जले बाढ़ सत्य उज्जल विशुद्ध सत्य ऊपर से ही आएगा तब तो उसको हम समझ सकेंगे, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो भाव प्रॉब्लम। इसलिए विश्वास पाइए, तर्क बहुत दूर, तर्क के द्वारा नहीं होगा, क्यों भाई लिखा है नैषा तर्क न मतिरा बनोया ज्ञानाय
सज्जन है
श्रेष्ठ।
ये तर्क के द्वारा ये हजार करो, मन के द्वारा करो, मन की वृत्ति का ये प्रश्न। यदि गुरुजनों की बातें सुन करके अपने मन में धारण करो और मन कुछ शुद्ध हुआ उस मन से कुछ अभिज्ञता हो, ये बात तो ठीक है, किंतु अपना जो मन है उस मन से और नीचे की तरफ नहीं चले। इसलिए इन लीलाओं के लिए यदि अपने मन से गोविंद लीलामृत पढ़ो, कृष्ण भावनामृत पढ़ो, तो मन कहां ले जाएगा? विष्णु में लेकर के डुबा करके नरक में ले जाएगा। और इसको श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों का मन अपने अंदर में लेकर के, उन भावनाओं को अपने में लेकर के धीरे धीरे अपने आत्मा को उस रूप में बनाओ जबकि वो शुद्ध सत्व प्रकाश पा जाए, तब उसके द्वारा इसका कुछ कुछ अनुभव वो ठीक। इसलिए अपने प्रयास से मत करो, नहीं तो मरने की संभावना है। जब वो कृपा करके अपने को वो जना देंगे तभी हम जानेंगे। कैसे होगा वो? इसके लिए अपने मन पर भरोसा ना करके, मन के द्वारा कसरत न करके, कसरत करो इस बात के लिए, किसके लिए? श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण जहां सर्वस्व तारे मिले एक हम। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जगदानंद स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनके चरणों का दिन रात इन्हीं के चरणों में अपने को समर्पित करके इन्हीं की भावनाओं का चिंतन करते हैं तो उनकी कृपा से वो चीज, अन्यथा अपने इन प्रयासों से अनाधिकारी होकर के करेंगे तो मरेंगे। राय रामानंद राय वो कोटि नमस्कार। राय रामानंद जी को कोटि कोटि नमस्कार। मुख्य कैद प्रभु रसे रविष्कार, महाप्रभु जी ने रस का विस्तार किया। दामोदर स्वरूप कर्चा अनुसार मैंने अपने नहीं किया, मैंने तो महाप्रभु जी को स्वरूप उस रूप में नहीं देखा, पीछे से नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमने वृंदावन का दर्शन किया। कह रहे हैं जब मैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे दांत फाल रहे हैं, तीर रहे हैं, संधियां हड्डियां सब जर्जरित हो गई, मैं अत्यंत वृद्ध जठा आतु वृद्धातु हो गया,
जरा तो
फिर भी लोग मुझसे कहा अनुरोध किया, मैंने उनको अपने चित्त में धारण किया। तब मदन मोहन लिखाए मोरे
हाथे धोरी लिखाए मोर मदन मोहन
लिखा डिक्टेशन कौन दे रहा वो भी नहीं, और भावना किसकी लिखा रहे हैं? तीनों ने हमें दर्शन दिए, पहले नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा की, फिर गौचंद्र जी की कृपा हुई, फिर वृंदावन जी की कृपा हुई, धाम ने दर्शन हमको दिया, फिर गोविंद गोपीनाथ जी की कृपा हुई, तब फिर उन वो तीनों भी करते हैं तो ये दिखाया। कैसे दिखाया? उसके लिए ठीक कह रहे हैं राय रामानंद जी और महाप्रभु के बीच में ये जो बातें हुई उसको स्वरूप दामोदर ने अपने श्लोकों में निबद्ध कर दिया। जब जब जो लीला होती वो लिखी, जैसे जगदानंद जी ने कहा है प्रेम विवर्त, प्रेम विवर्त बहुत ही सुंदर ग्रंथ, जखन जहां मने पड़े तखन तहां लिखी, जखन जहां मने पड़े, महाप्रभु साथ में रगड़ झगड़ ये सब हो रहा है और उनकी प्रेममयी लीलाएं बाल्यकाल से लेकर के अंतिम तक जब जब मन में पड़ती है यार वीरा रस में पक करके रोने लगते हैं, जब फिर शांत हो जाते हैं उन्हीं की देखो वो छंदों में। ऐसे स्वरूप दामोदर जी लिख रहे हैं, वहां पर तो स्वरूप दामोदर थे नहीं तो कैसे लिखा? राय रामानंद जी से स्वरूप जी की बड़ी मित्रता, राय रामानंद जी और ये मिलते तो ये सब बातें होती, तो राय रामानंद जी ने उनको जैसे कि तैसी बातें जो हुई थी सब सोचाम उनको बताया, उन्होंने कर्चे में ये सब। जगन्नाथ जी का रस प्रसंग चला जाए तो जगन्नाथ जी का रस प्रसंग
आत्मपान स्वरूप दान करते ही आज दिन में सुना घर में गए उन्होंने इस तरह से ये सब कर्चे बने। कर्चों को रघुनाथ दास गोस्वामी रोज पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते उनको याद कर लिया सब कर्चा जितना उनका याद करके और उन्होंने लिख दिए या वही कर्चा उनको मिल गया लिखा हुआ उन्होंने रख लिया और याद भी उनको हो गया और उसके बाद में उनके अप्रकट होने पर तो सब कुछ छोड़ करके चले आए किंतु पर्चों को छोड़ सकते हैं यही तो उनकी संपत्ति उनको लेकर के चले आए राधा कुंड के। राधा कुंड के तट पर उनका कृष्णदास कविराज जो स्वामी का भजन स्थल है और वहीं पर चैतन्य चरितामृत को उन्होंने लिखा वहीं पर बैठकर तो वहीं पर उन्होंने वो सब कर्चों को रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने सुना सुन करके नोट कर लिए और जब ये ग्रंथ होने लगा तो उन्होंने इस ग्रंथ में कहते हैं कि ये हमारे मन की कल्पना मत समझना जैसे उपन्यासकार बंकिम चंद्र हमारे प्रेमचंद थे हिंदी में प्रेमचंद ने लिखा है गुरुदान मंत्र मंत्र अरे गोदान लिखा है ना उपन्यास है उसको प्रेमचंद ने लिखा है। ऐसे ऐसे बंकिम चंद्र जी ने कितने कितनी कहानियां लिखी हैं बंगाल में वो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं किंतु ये सब कल्पनाएं हैं कल्पना ये कहते हैं कि हमारी ये चीजें कल्पना नहीं है वास्तविक सत्य के ऊपर में प्रतिष्ठित है इसका जो श्रवण करेगा उसका निश्चित रूप में कल्याण होगा। रामानंद मिलन लीला करिला प्रचार श्री रूप रघुनाथ पदेजा चैतन्यनाथ चरितामृत कहे अब संक्षेप में वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य नित्यानंद अद्वैताचार्य स्वरूप दानोजा राय रामानंद इत्यादि जितने हैं उन सब के विचारों को अपने हृदय में रस रूप में कौन यहाँ पर संग्रहित कर रखा रूप और सनातन। यदि तुमने रूप सनातन के ही चरणों का आश्रय कर लिया है तो राधा कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य ब्रजभूमि सबका ये हो गया आश्रय करना इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे जहाँ चैतन्य चैतन्य कहे जिनको और रघुनाथ चंद्र के चरणों में आशा है उनकी सेवा करने की अभिलाषा है उनको जानने की अभिलाषा है तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उनको इसके माध्यम से उनकी कृपा चैतन्य चरितामृत वर्तखंडे रामानंद राय संगो सेवा नाम नमस्तम पर अब इसके बाद में महाप्रभु दक्षिण देश में ध्यान करेंगे उसमें बहुत सी कुछ चीजें जानने के लिए है उसको भी मैं
Oh.